हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 48 48। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। ये बात शिला बलदेव विद्याभूषण भी अपनी कमेंट्री में बताते हैं। योगस्थ में योग शब्द जो है ये समत्वम को इंगित कर रहा है। समत्वम योग उच्यते क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समभाव रहने के लिए हमको मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता है। इस जगत में हमेशा हमको जय प्राप्त नहीं होती है, हमेशा पराजय प्राप्त नहीं होती है, हमेशा मान नहीं मिलता है, हमेशा अपमान नहीं मिलता है। तो मन के कारण, मिथ्यांकार के कारण हम अपनी पहचान इन परिस्थितियों से करते हैं और इस कारण से हम सम नहीं रह पाते। लेकिन बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हुए, अपने मन को नियंत्रित करते हुए हम ये समझें कि हमारा इन सृष्टियों में यानी कि जय पराजय, मान अपमान, लाभ और हानि में कोई योगदान नहीं है। और ये प्रकृति के द्वारा भगवान इसको सृजन करते हैं, मैं इससे अलग हूं। अगर इस प्रकार की भावना हमारे मन में आती है मन के नियंत्रण के द्वारा, तो हम सम के स्तर पे स्थित हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए व्यक्ति को बड़े सूक्ष्म रूप से अपने मन की चंचलता पे विचार करना पड़ेगा और इंद्रियों की चंचलता पे विचार करना पड़ेगा। इंद्रियां वहां पे जाती हैं जहां पे सुख मिलता है उनको, और जहां पे सुख नहीं मिलता है उनसे वो दूर रहना चाहती हैं। हमारा मन भी वहां से निवृत्त होना चाहता है। तो इसलिए मन को एकाग्र करने का अर्थ है, यहां पे हम जैसे समझ रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए रखना, यही मन की एकाग्रता है और इंद्रियों की एकाग्रता, एक लक्ष्यता है। और इसमें मान अपमान, जय पराजय, सिद्धि असिद्धि, सिद्धि मतलब काम हुआ या नहीं हुआ, इस पे फोकस नहीं है मन का। मन का फोकस क्या होना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के ऊपर। तो इसी कारण से मन को जब हम एकाग्र करेंगे तो मन सम भाव में स्थित हो जाएगा। एक ही भाव रहेगा, कृष्ण को प्रसन्न करना, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाए रखना। और बाह्य परिस्थितियों से व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, उनका अनुभव करेगा लेकिन उससे प्रभावित नहीं होगा, भगवान की सेवा को त्यागेगा नहीं। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान अर्जुन के युद्ध करने से प्रसन्न हो रहे हैं। युद्ध जीतने या हारने से भगवान का कोई सरोकार नहीं है, और वो चाहते हैं कि अर्जुन भी इस प्रकार के कंसिडरेशन, इस प्रकार के विचार को त्याग करके कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, वो युद्ध करे। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। और ये निर्देश महाप्रभु ने हम सबको दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइया तारे देश। यानी कि हमारा कर्तव्य है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण की वाणी का प्रचार करने का प्रयास लोगों तक हम करें। वो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, हमें मान देंगे अपमान देंगे, इस पे विचार करने का कर्तव्य या इस पे ये विचार का इस भावना को मन में लाने की हमें आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारे इस प्रयास से प्रसन्न होंगे कि हम उनकी वाणी का प्रचार करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात श्रीला बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि इन सेक्शंस में निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। और श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण तीन प्रकार के योगियों के बारे में बताते हैं। एक है सनिष्ठित, दूसरा है परिनिष्ठित और तीसरा है निरपेक्ष। सनिष्ठित भक्त निष्काम कर्म योग करते हैं, फिर ज्ञान योग करते हैं, फिर अष्टांग योग करते हैं और फिर भक्ति योग पे आते हैं। धीरे धीरे उनकी श्रद्धा बढ़ती है। परिनिष्ठित भक्त सीधे ही भगवान की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि में लगते हैं और वर्णाश्रम धर्म का पालन इसीलिए करते हैं ताकि समाज में अन्य लोगों के लिए आदर्श प्राप्त हो। उनको वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं होती है, मतलब श्रद्धा का मतलब ऐसा वो समझते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने मात्र से मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में वो इस जगत में रह सकते हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है वो कृष्ण भक्ति में अधिक होता है। कह सकते हैं अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति में ही लगे रहना चाहते हैं। और निरपेक्ष भक्त जो हैं वो वर्णाश्रम में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो केवल कृष्ण के भजन में ही लगते हैं। वो किसी के लिए आदर्श स्थापित करने का भी प्रयास नहीं करते, केवल भगवान के भजन में लगते हैं। तो प्रायः हम सब लोग वो प्रभुपाद जी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम लोग कम से कम परिनिष्ठित भक्त बने। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम सभी लोग अगर आप देखें तो थोड़ा सा भी प्रयास करें तो भगवान की भक्ति में, श्रवण कीर्तन भक्ति है या नवदा भक्ति है, उसमें हम आसानी से लग सकते हैं अपने सामाजिक कर्तव्य को करते हुए भी। तो यहाँ इसी बात को लेकर के यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रभुपाद केवल निष्काम कर्मयोग के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि हमें परिनिष्ठित होने के लिए बता रहे हैं कि कृष्ण के निर्देशों का पालन करना ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एकमात्र, अब फिर से समझ लीजिए इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं, कि कृष्ण भावनामृत की विधि का मतलब साधना भक्ति, साधना भक्ति में लग जाना हमको और उसके संग संग अपने जीवन के कर्तव्य को करते रहना। और इसमें अगर मान अपमान, हानि लाभ कुछ हो रहा है उसके बारे में विचार ना करे, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इन क्रियाओं को करता रहे। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भौतिक जगत में हम लोग भगवान को, भगवान की नकल करना चाहते हैं। भगवान है इस जगत के स्वामी, भगवान ही जगत के नियंता है और भगवान ही भोक्ता है। तो जब हम इस प्रकार सोचते हैं कि हम नियंता हैं, हम भोक्ता हैं, तो नेचुरली हम सोचेंगे कि जो हमारे कार्य हैं उसका फल के सृजनकर्ता, उस फल के बनाने वाले भी हम हैं और फिर उसको भोगने वाले भी हम होंगे और फिर हम कर्म बंधन से या फलों की वजह से, फलों में आसक्त होने के कारण कर्म बंधन से आसक्त हो जाएंगे और वापस हमको अलग जन्म देने की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण का दास हूँ, उनके द्वारा मुझे इस परिस्थिति में रखा गया है और मेरा कर्तव्य है अपने कर्तव्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जितना यथाशक्ति मेरे पास सामर्थ्य है उसे करता रहूं, तो अपने आप ही स्वामित्व का भाव चला जाता है। जैसे कैशियर, उसको पता रहता है कि मैं कैशियर हूं बैंक का, मैं नौकरी कर रहा हूं, तो हजारों लाखों रुपए नोट गिनने के बावजूद भी वो ये नहीं कहता कि ये नोट मेरे पास आ रहे हैं, कतई ही नहीं होता। वो यही समझता है कि बैंक के बिहाफ पे, बैंक के एवज में मैं इन नोटों को स्वीकार कर रहा हूं या कुछ लोगों को मैं नोट दे रहा हूं। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। ये बात हमने भी समझाई, कृष्ण के प्रति दासत्व का जो भाव है ये आधारभूत आधार है जिसके द्वारा व्यक्ति इस सम की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। यानी व्यक्ति अपने आप को इस भावना में स्थित करे कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, तो ये योग होता है योग में स्थित होकर के कार्य करना। अर्जुन क्षत्रिय है अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहां तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहां पर परोक्ष रूप में अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो यानी कि कोई व्यक्ति कहता है कि हम गृहस्थ हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, जो भी, प्राय ये बात गृहस्थ लोग अधिक बोलते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम भक्ति कैसे करें, हमारे पास इतनी सारी कर्तव्य हैं। देखिए ये क्लियर प्रभुपाद समझा रहे हैं विष्णु पुराण से, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषे न परह पुमान नान्यत तत्तोष कारणम। वर्णाश्रम इस श्लोक प्रभुपाद जी ने को यहाँ पे उद्धृत किया है कि वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। तो अगर कोई ब्रह्मचारी है तो भी उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो कृष्ण को प्रसन्न करे। अगर कोई गृहस्थ है तो भी उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो कृष्ण को प्रसन्न करे। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए कोई व्यक्ति ये बहाना नहीं मार सकता है कि मैं गृहस्थ हूँ तो मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करूँगा, तो फिर उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और ये कोई गृहस्थ धर्म भी नहीं होगा। वर्णाश्रम का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति का मान लीजिए स्वभाव है गृहस्थ होने का, तो व्यक्ति गृहस्थ रहे लेकिन कृष्ण की सेवा करता रहे, ये दैवी वर्णाश्रम। वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ में जाना चाहता है, वानप्रस्थ लेना चाहता है, ठीक है जाए लेकिन कृष्ण की भक्ति करता रहे। संन्यास लेना चाहता है, कोई बात नहीं, संन्यास लेने के बाद भी कृष्ण की भक्ति करता रहे। और ब्रह्मचारी है तो भी कृष्ण की भक्ति की ट्रेनिंग प्राप्त करे। कृष्ण की सेवा करना ये कॉमन ग्राउंड है, इसको त्यागना कभी भी नहीं चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट 49 को देखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि जो लोग इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं और फलों में आसक्त हो जाते हैं तो उनको क्या होता है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपण फल हे तब। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। फिर मैं आपका ध्यान इस बात पर आकृष्ट करूंगा कि भगवान प्रभुपाद जी केवल निष्काम कर्म योग के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे डायरेक्ट भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी परिनिष्ठित भक्त बनाना चाहते हैं हमको, धीरे धीरे प्रगति नहीं करवाना चाहते, जल्दी से प्रगति कराना चाहते हैं। भक्ति के द्वारा हम समस्त गर्हित कर्मों से कैसे दूर रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। भक्ति में हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करने का मौका मिलता है। तो इंद्रियों को जब लगातार कार्य करने के लिए भगवान की सेवा में हम लगाए रखेंगे तो अपने आप ही जो बुरे कर्म हैं वो नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अभी भगवान के बारे में बोल रहा हूँ तो मुझे और कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि अब मुझे कोई बुरी चीज़ मेरे मुँह से ना निकले, कोई मुँह से गाली नहीं निकले, मैं कोई प्रजल्प नहीं करूँ, ये तो अपने आप ही हो रहा है। मैं भगवद गीता के ऊपर कुछ बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, तो अपने आप किसी भी गर्हित कर्म से बचा हुआ हूँ इस समय। और अगर हम लोग इस प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त करें, सीखें कि कैसे हर क्षण हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, तो फिर हम बड़ी आसानी से बुरे कर्मों से बच जाएंगे। बुरे कर्म मतलब फल को भोगने की इच्छा वाले कर्म, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से प्रेरित कर्म, और इस प्रकार से हम भगवान की शरण में जा सकते हैं, जाते हैं। जो व्यक्ति, तात्पर्य को देखिएगा, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। फिर याद दिलाऊंगा, परिनिष्ठित भक्त, अनन्य भक्त मतलब जिसने समझ लिया कि मैं भगवान का दास हूं, तो वो अन्य कर्तव्यों को छोड़ करके या अन्य कर्तव्यों को भी कर रहा है तो इसी भावना से कि मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं इसलिए कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमारे चार हाथ निकल आए, मुक्ति का अर्थ है हम अपने स्वरूप को समझें, अपनी वास्तविक स्थिति को समझें और उसके अनुरूप हम कार्य करें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। ऐसे कर्म जो उसकी कृष्ण भावना को ह्रास करते हैं, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, सच्चा भक्त, सच्चा व्यक्ति ऐसे कर्मों में नहीं लगता है। जीव के लिए ऐसे भक्ति कर्म का सही मार्ग है, क्षमा कीजिएगा, जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। मतलब फिर प्रभुपाद यहाँ फोकस कर रहे हैं कि हमको डायरेक्ट भक्ति में लगने का प्रयास करना चाहिए। और मान लीजिए परिवार चलाने के लिए या फिर हमें कुछ पैसे भी कमाने हैं तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए, परिवार भी इसलिए पालन कर रहे हैं ताकि परिवार के संग सब लोग मिल करके सुचारू रूप से भक्ति कर सकें। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये है, फिर वही बात है, कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है तो सोचेगा अरे पैसे तो मेरे हैं, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, इनको मैं भोगूंगा, इनको भगवान की सेवा में क्यों लगाऊं। तो ये चीज कहीं भी अप्लाई करी जाए, चाहे धन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बच्चों के रूप में, जो भी संपत्ति किसी व्यक्ति के पास है, अगर उसका वो भोग स्वयं करना चाहता है तो वो कृपण है, वो कंजूस व्यक्ति है, मनुष्य जीवन को उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहा है। किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। बहुत सुंदर बात है कि जो धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी है, वो हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं। अगर इनका उपयोग भगवत सेवा में नहीं किया तो ये हमें केवल दूसरे जन्म के लिए तैयारी करवा देंगे बस, क्योंकि इनमें आसक्ति रहेगी और ये आसक्ति फिर दूसरे जन्म का कारण बन जाएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन सभी से प्रेम तो करते हैं, लेकिन प्रेम का मुख्य लक्षण ये है, मुख्य कार्य ये है कि सभी को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो आसक्ति नहीं डेवलप होती। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। बहुत क्लियर है, अगर भक्ति के अलावा हम कुछ कार्य कर रहे हैं या फिर ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भक्ति को करने के लिए समर्पण सपोर्ट नहीं करता है, फायदा नहीं करता है, लाभ नहीं करता है, तो फिर वो कार्य हमको निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देगा। तो आप कभी सोचिए कि किस प्रकार से समाज में लोग ऐसे कार्यों में बड़े रुचि लेकर फंसे हुए हैं जो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में और गहरा फंसा देगा। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात ही नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। बहुत सुंदर बात है कि दैववश या परिश्रम से हमें धन मिल जाए तो कोई मतलब बुरी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस धन का उपयोग अगर हमें ना करना आए तो हमारे बिल्कुल वो नरक बनने जाने का कारण हो जाएगा। धन आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धन का उपयोग करना ना आए तो बहुत खतरनाक है। धन आ जाता है उसका उपयोग हम शराब पीने के लिए, वैश्यागमन करने के लिए, मांस खाने के लिए, शराब जुआ खेलने के लिए करते हैं, तो फिर वही धन हमको नरक लेके जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक बहुत समझना चाहिए कि जो धन आ रहा है ये मेरे नाव को डुबोने के लिए आ रहा है। जैसे कि हम किसी नाव में बैठे हैं और उसमें छेद हो जाए और जल भरने लग जाए तो हम खुश नहीं होंगे कि भाई अब इस जल से हम चाय बनाएंगे, नहाएंगे, नहीं, वो जल भरेगा तो हमारी नाव को डुबो देगा। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे नाव में जल आता है तो दोनों हाथ से हम बाहर फेंकते हैं अगर चाहते हैं कि हमारी नाव तैरती रहे पानी में, तो उसी प्रकार से अगर गृहस्थों के पास कोई धन आता है या किसी के पास भी कोई धन आता है तो उसे सोचना चाहिए कि कैसे मैं उसे भगवान की सेवा में नियोजित करूं, नहीं तो वो धन आपको हमको पाप करने की प्रेरणा देगा ही, स्पेशली कलयुग में। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। कृपण का अच्छा उत्तर है, अच्छा मतलब है, कंजूस व्यक्ति अपने पे भी जो धन उसके पास है वो अपने अपने कल्याण के लिए भी खर्च नहीं करता और अपने परिवार वालों के कल्याण के लिए भी खर्च नहीं करता है और उनको करने भी नहीं देता। तो उसी प्रकार से एक कृपण व्यक्ति भगवान की भक्ति स्वयं भी नहीं करता, परिवार वालों को भी नहीं करने देता, और इस प्रकार से मानव जीवन का जो बहुमूल्य समय मिला है, जो सबसे बड़ा धन है, वो उसको गंवा देता है। अंततोगत्वा उसको जानवरों के शरीर में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सीखना चाहिए कि कैसे भक्ति करे और किस प्रकार से अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा करके फलों की इच्छा से रहित होकर कार्य करना सीखे। एक श्लोक और देखेंगे। बुद्धि युक्तो जहाति हा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। बहुत सुंदर लाइन है, इस बात को भगवान नवे अध्याय में भी बताते हैं कि अपने कर्मों को अगर हम कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो वो कर्म हमको पूर्वगत किए गए शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त कर देता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ भगवान के बारे में, तो भगवान के बारे में बोलना एक कर्म है, तो ये जो कर्म भगवान को समर्पित है ये मुझे और आप जो आप सुन रहे हैं सभी को पूर्वगत किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त कर देता है, तो बहुत लाभकारी है। तो ये कार्य करने की ट्रेनिंग हमको सीखनी पड़ेगी, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, यानी व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से। कैसे हम अपने कर्मों को कृष्ण को से जोड़ सकें, उनकी भक्ति कर सकें, ये अगर हमने सीख लिया और हर कर्म को हमने सीख लिया करना, तो फिर बड़ी आसानी से इस जगत में हम रह सकते हैं और इस जगत में रहते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं और कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तात्पर्य, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता है, करता रहा है। इसका मतलब क्या है, इस जीवन में भी देखते हैं कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो दुख क्यों आता है, पाप किए गए हैं हमने पहले, और सुख क्यों आ रहा है, भौतिक सुख, क्योंकि पहले कुछ पुण्य किया है, तो पुण्य और पाप होते ही रहते हैं, इसलिए मिक्स रूप में हमारे सामने सुख और दुख आते रहते हैं। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि व्यक्ति अगर इस सकाम कर्म करता है, भौतिक भावना से प्रेरित कार्य करता है, तो और उसका स्वरूप कि वो आत्मा है वो ढक जाता है, वो ज्ञान जो है उसका आवृत हो जाता है। तो भगवान की भक्ति करने से ये ज्ञान भी और हृदय में उदित होने लगता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। केवल थियोरेटिकल नहीं रहता है, भगवान की भक्ति करने से ये अज्ञान भी नष्ट हो जाता है और व्यक्ति अनुभव कर पाता है कैसे वो भगवान का दास है और किस भाव में उनकी सेवा करना चाहता है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर की कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। मतलब कर्म को कृष्ण को दे दीजिए और उसके बाद उनका प्रसाद ग्रहण कीजिए। उदाहरण, आपने पहले सुना है कि दो पक्षी हैं और एक पक्षी पेड़ पे बैठ के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी देख रहा है, और दूसरा पक्षी जो देख रहा है वो परमात्मा है। तो हमें क्या करना है, अच्छे बुरे फलों को खाने की बजाय उन फलों को भगवान कृष्ण को समर्पित कीजिए, अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित कीजिए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, भगवद गीता को पढ़ें, भगवान की आरती करें, पूजा करें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान को भोग लाके प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से धीरे धीरे करके अपनी हर क्रिया को कृष्ण को समर्पित करने का प्रयास करें और इसके द्वारा हम शुभ और शुभ दोनों, शुक्र क्या लिखा है इसमें, सुकृत उभे मतलब दोनों, सुकृत दुष्कृत, बुरे और अच्छे दोनों कार्यों से बचें और अगले जन्म ना लेने का प्रयास करें, अगला जन्म ना लेने का प्रयास करें। तो ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से करेगा, और ऐसा पहले के लोगों ने किया है और वो उसे मुक्त हुए हैं। इसके बारे में चर्चा भगवान आगे करेंगे। हरे कृष्णा।